नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच शुरू की। टाटा समूह ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की। प्रदेश में 19,838 सिपाहियों की बहाली के लिए 16 जुलाई से 6 चरणों में होगा लिखित परीक्षा का आयोजन। और प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं। अब समाचार विस्तार से। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि जांच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी। श्री नायडू ने बताया कि सरकार इस मामले की विस्तृत जांच के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की समिति गठित कर रही है। ये समिति उड़ान सुरक्षा मजबूत करने और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के उपायों पर विचार करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए औपचारिक जांच शुरू कर दी है।
एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मन पूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।
श्री शाह ने कल अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा अधिकारियों के साथ बैठक में की। उन्होंने कहा कि गुजरात की फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय जल्द डीएनए जांच पूरी करेंगे, जिसके बाद शव परिवार वालों को सौंप दिए जाएंगे। इस बीच एयर इंडिया ने अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान की दुर्घटना में 241 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। विमान कल दिन के 1:39 पर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में यात्री और चालक दल समेत कुल 242 लोग सवार थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता विजय रूपाणी भी मृतकों में शामिल हैं। रमेश विश्वास कुमार नाम के एक यात्री इस हादसे में सुरक्षित बच गए। इस बीच टाटा ग्रुप के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को कंपनी की ओर से 1-1 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की है। प्रदेश में 19,838 सिपाही की बहाली के लिए 16 जुलाई से 3 अगस्त के बीच 6 चरणों में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों में 627 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में 16 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा प्रतिदिन एक पाली में दोपहर 12:30 से 2 बजे के बीच होगी। श्री कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 से 10:30 तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए प्रत्येक जिले में डीएम को परीक्षा समन्वयक और एसपी को सह समन्वयक बनाया गया है। अभ्यर्थी 20 जून से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता को 1.5 गुना तक बढ़ाने की घोषणा की है। पटना में पंचायती राज प्रतिनिधियों की एक शिष्टमंडल से भेंटवार्ता में मुख्यमंत्री ने 6 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। मनरेगा के तहत मुखिया अब 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए तक की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेंगे। साथ ही अब पंचायती राज संस्थाएं 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि से 15 लाख रुपए तक की योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय स्तर पर स्वयं लागू कर सकेंगी। इसके अलावा पंचायती प्रतिनिधियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति के आवेदन को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने का जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है। अब पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यकाल के दौरान सामान्य मौत होने पर भी 5 लाख रूपये अनुग्रह राशि दी जाएगी। पहले सिर्फ आकस्मिक मृत्यु होने पर ही यह प्रावधान था। शिष्टमंडल के साथ वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो जाएंगे। पंचायत सरकार भवन निर्माण का जिम्मा भी ग्राम पंचायतों को ही सौंपा जाएगा। समाचार कक्ष से कल्पना झा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 271.15 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण करेंगे। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प सभागार में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी करेंगे। प्रदेश के सभी न्यायालयों और थानों में कोर्ट प्रभारी और नायब तैनात किए जाएंगे। अपराध अन्वेषण ब्यूरो सीआईडी के अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी पारसनाथ ने कहा है कि पुलिस से जुड़े मामलों के ट्रायल में तेजी लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। श्री नाथ ने कहा कि कोर्ट प्रभारी और नायब न्यायालय से जारी होने वाले समन, वारंट और कुर्की आदि का कार्य समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले मार्च महीने से प्रयोग के तौर पर पटना में कोर्ट प्रभारी और कोर्ट नायब की व्यवस्था लागू की गई है। इसके सकारात्मक और सफल प्रयोग को देखते हुए ये व्यवस्था राज्य के सभी थानों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी को कोर्ट प्रभारी बनाया जाएगा, जबकि सिपाही को कोर्ट नायब बनाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। 42.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं राज्य के दक्षिणी हिस्से में गर्म दिवस की स्थिति बने रहने की संभावना है। उत्तर बिहार समेत कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है।
अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात गिरावट होने का पूर्वानुमान है। दिनांक 13 जून 2025 को राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कैमूर, रोहतास एवं बक्सर जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण भाग के जिलों में गर्म और आर्द्र दिन रहने की संभावना है।
इधर भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने जिले में कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 11 बजे तक ही जारी रखने का निर्देश दिया है। कोचिंग संस्थानों में अपराह्न 4:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों को संचालन किया जा सकेगा। वहीं प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 10 बजे तक ही संचालित होंगे। यह आदेश आज से 16 जून तक प्रभावी रहेगा। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के नाम से 6,70,781 दस्तावेजों का निबंधन हुआ है। इस निबंधन के माध्यम से 57,520 एकड़ भूमि का स्वामित्व महिलाओं के नाम स्थानांतरित किया गया है। श्री सदा ने कहा कि महिलाओं को दस्तावेजों के निबंधन शुल्क में दी गई 0.4% की रियायत का व्यापक असर हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में महिलाओं को निबंधन शुल्क में 130 करोड़ 46 लाख रुपए की सीधी छूट मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी सभी शाखाओं और गैर गृह शाखाओं सहित निष्क्रिय खातों और दावा न की जा रही जमा राशि खाते को सक्रिय बनाने के लिए केवाईसी ग्राहक को जानो को अद्यतन कराएं। रिजर्व बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि बैंकों को वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया द्वारा निष्क्रिय खातों और लावारिस जमा राशि खातों के केवाईसी अपडेट करने की सुविधा प्रदान करने के प्रयास करने चाहिए। देश में मई महीने में खाद्य पदार्थों के दाम घटने से खुदरा मुद्रा स्फीति की दर घटकर 2.8% पर आ गई। अप्रैल में यह दर 3.16% दर्ज हुई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वार्षिक आधार पर यह फरवरी 2019 के बाद सबसे कम मुद्रास्फीति दर है। राजधानी पटना में कोविड के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान आईजीआईएमएस में 3 समेत 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि कोविड संक्रमितों की कुल संख्या 72 हो गई है। और अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। सहरसा जिले की पुलिस ने बैजनाथपुर थाना क्षेत्र से 50,000 रूपये के इनामी अपराधी नील सागर यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने बताया कि अपराधी के खिलाफ सहरसा, पूर्णिया और मधेपुरा जिले के विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं। रोहतास पुलिस ने ट्रेनों में महिलाओं के जेवरात छीनने और चुराने वाले एक अंतर जिला गिरोह के 5 सदस्यों को सोने चांदी के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के खलावा पट्टी तमकुहबा गांव के पास गंडक नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। थाना अध्यक्ष धर्मवीर भारती ने बताया कि हादसे में 4 बच्चों के डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की मदद से एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वहीं एक अन्य की तलाश जारी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को अपनी बैनर खबर बनाई है। हिंदुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, उड़ते ही गिरा विमान, 265 मरे। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर लिखा है, अहमदाबाद से लंदन जा रहा बोइंग ड्रीमलाइनर बना आग का गोला। दैनिक भास्कर ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई पर लिखा है, ऋषु श्री और उससे जुड़े लोगों के 9 ठिकानों पर छापेमारी। प्रभात खबर ने महागठबंधन की बैठक पर लिखा है, गठबंधन के घटक दल देंगे अपनी पसंदीदा सीटों की सूची। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, सभी 243 सीटों पर तैयारी करेगी लोजपा आर। आज अखबार लिखता है, प्रोफेसर रणवीर नंदन बने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच शुरू की। टाटा समूह ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की। प्रदेश में 19,838 सिपाहियों की बहाली के लिए 16 जुलाई से 6 चरणों में होगा लिखित परीक्षा का आयोजन। और प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।